پیغمبر اسلام کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ ہی کفار کے مقابلے میں نرم نہیں بلکہ کفار کے مقابلے میں شدید. دیکھیے یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ وہ انسان جو آپ کو نہیں مانتے ان کے مقابلے میں شدید, انسان جو رسول کو نہیں مانتے ان کے مقابلے میں شدید ہے رسول خدا, ایسا نہیں. رسول رحمت للعالمین, عالمین کے لیے رحمت, اس کے نگاہ میں تمام انسان یکساں. لیکن شدید کس کے لیے ہے؟ شدید اس کے لیے ہے جو اللہ کی نعمتوں کا کفران کر, اللہ سے دوری اختیار, اللہ سے بغاوت کر, اللہ سے دشمنی کر. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی اس صف میں نہیں آئے. بہت سے ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں جو کفر کی صف میں آ جاتے ہیں, معنوی اعتبار سے نہیں, یعنی عام اعتبار سے نہیں. جو تعریف ہے ہر مسلمان وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان, لیکن کلمہ پڑھنا ایک چیز ہے, اپنے جیسے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ایک دوسری چیز ہے, خیانت کرنا ایک دوسری چیز ہے, دھوکہ دینا ایک دوسری چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جسے کفر کا ہے, کفر کی مانتے ہیں. تو اگر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ صفات رکھتا ہے اپنے اندر تو پیغمبر کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. پیغمبر کی نگاہ میں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس لیے کہ پیغمبر جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, اگر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے تو پیغمبر اس سے غضبناک ہوں گے, اس سے محبت نہیں کریں گے. کلمہ بھی پڑھو خیانت بھی کرو, پیغمبر اس سے محبت نہیں کریں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا, پیغمبر کا کردار یہی ہے اور پیغمبر کے ماننے والوں کا کردار. میں برادر عزیز مولانا ذکی باقری صاحب کی تمام مجلسیں جو آپ نے سنی, میں نے آخری مجلس سنی, میں اسی سے مربوط کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سلسلہ باقی. حاصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اس قدر اختلاف پائی جاتا ہے. السلام علیکم. آیت یہ کہہ رہی ہے رحماء بینہم, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چاہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, رحماء ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے چاہت رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ صورتحال کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ ہم بھی پیغمبر کے ماننے والے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اگر ہمارے ماننے والے ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے کو چاہو. ہمارے یہاں یہ صورتحال کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم نے اپنے اپنے مولانا نے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا کیا ہے, اتحاد ہے نا, وحدت کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور. تو وحدت کا پیدا ہو, اتحاد کا پیدا ہو, آیا اسی صورت میں اتحاد پیدا ہوگا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا فرش بچھائیں और फर्श को तकसीम कर दें, ये उनका फर्श है, ये हमारा फर्श है, ये उनकी मर्जी से, ये हमारी मर्जी से है, ये इतिहाद का उन्वान नहीं। रोहमा बैनहुम की तस्वीर है ये, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं नहीं, वैसे तो बाजार में मिलेंगे तो सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहां मामला है बैत का होगा वहां सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। शहजादी कौनैन ने भरे दरबार में जब आली करीम खुतबा इरशाद फरमाया है और दंडाशिकर खुतबा इरशाद फरमाया है तो उसने ये फरमाया है कि वहुब्बना अहलल बैत निजामन लिल्मिल्ला, और हम आले मोहम्मद की मोहब्बत कौम में नज्म ज़ब्त और इत्तेहाद का बाइस बनती है। हमारे मोहम्मद की मोहब्बत जो है वो उम्मत में नज्म ज़ब्त का बाइस बनती है और इत्तेहाद और वहदत का बाइस बनती है। तो जहां मोहब्बत आले मोहम्मद होगी, शहजादी सिद्दीका है, शहजादी सिद्दीका है, तो अगर ये कहती है कि हमारी मोहब्बत इत्तेहाद का बाइस है, हमारी मोहब्बत इत्तेहाद का बाइस है, तो वो सिद्दीकाए कुबरा है जो फरमा रही है कि हमारी मोहब्बत इत्तेहाद का बाइस है, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा, हम आपसे पूछे आप मोहब्बत करते हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, कौन होगा जो नहीं कहेगा कि मौला अली से मोहब्बत नहीं करता, कौन होगा जो ये नहीं कहेगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, सभी कहेंगे अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, फिर ये तफरीका फिर ये तफरीका क्यों है, फिर ये दूरी क्यों है, फिर ये इख्तलाफ क्यों है, मौला अली के नाम पर इख्तलाफ, अहले बैत के नाम पर इख्तलाफ है, या फिर कौन सा खेल में। इसका मतलब ये है कि कल मौलाना फरमा रहे थे कि इमाम साजिद अली सलात व सलाम की हदीस है, नहनु सिरात मुस्तकीम, हम हैं जो सिरात मुस्तकीम है। शैतान ने क्या कहा था, ला उदन सिरात अकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊं, मैं जहां तक ले जाना चाहता हूं आपको पहुंच रही थी। अहले बैत फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं, नहनु सिरात मुस्तकीम, हम हैं जो सिरात मुस्तकीम है। शैतान क्या कह रहा था, जब दरबार से निकल रहा था तो ये कह रहा था, पबल इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, लौ दिरहुम अजमईन, सबको गुमराह करूंगा, वला उदन सिरात कल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। लफ्ज़े मिलाके नहनु सिरात मुस्तकीम, यानी हम आले मोहम्मद सिरात मुस्तकीम है। शैतान कह रहा मैं कहां बैठूंगा, ला खुदा ना सिरात का मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा, कहीं और नहीं जाके बैठूंगा, कहीं और जाके नहीं बैठूंगा, यानी विलायत और मोहब्बत अहले बैत के दरवाजे पर जाके बैठूंगा, विलायत और मोहब्बत अहले बैत के दरवाजे पर जाके बैठूंगा। छठे माह फरमाते हैं हम सिरात मुस्तकीम, तो शैतान कहां बैठ रहा है, जाके वहां बैठ रहा है जहां आले मोहम्मद की मोहब्बत है। अब कहीं और गुमराह करने के लिए, कहां गुमराह करने के लिए जाएगा, बुत परस्तों के यहां, वो खुद गुमराह है, तस्लीफ वाले लोगों के यहां जो तीन खुदा को मानते हैं वो खुद गुमराह है, वो अफराद के जो पैगंबर के बाद अलहदा हो गए उनके यहां जाएगा गुमराह करने के लिए, वो खुद अपने रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप कहां जाएगा, उसने खुद ही कह दिया, पता बता दिया कि मैं कहां बैठूंगा। वो लोग जो मोहब्बत अहले बैत करने वाले हैं, मैं उनके करीब जाके बैठूंगा, वलउफियन्नहुम अजमईन, और मैं उन्हें भड़काऊंगा और गुमराह करूंगा। अब आप कहिए कि मोहब्बत अहले बैत के अंदर भी गुमराही है, आपसे पूछता हूं कौन है जो मुनकिर मोहब्बत अहले बैत, कौन है इस बात में है कोई जो उनके लिए अगले भाई थे, मोहब्बत है अगले भाई। सब ये कहेंगे मरना क्या बात करते हैं, अगर मोहब्बत है अगले भाई ना होती तो हम आते थे, हम यहां क्यों आते। तो हम ये पूछेंगे आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत है तो अपने भाई की मोहब्बत भी है, अपने अजीजों की मोहब्बत भी है, अपने दोस्तों की मोहब्बत भी है, अपने जैसे लोगों की मोहब्बत भी है, तो फिर भाई का माल गश्त करने के लिए क्यों खड़े हुए, फिर एक दूसरे से अदावत क्यों कर रहे हैं, फिर दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। यह अदावत बताती है मोहब्बत अहले बैत नहीं है, कुछ और है। ज़बान से मोहब्बत अहले बैत का इकरार है, दिल में किसी और की मोहब्बत है। वो कौन सी मोहब्बत है? हमारी अपनी मोहब्बत, हमारी अपनी मोहब्बत। हमारे पद में भी जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं और किए जाते हैं, यानी मोहब्बत अहले बैत रखने वालों के दरमियान भी जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं या किए जाते हैं, वो इख्तिलाफात इसी बुनियाद के ऊपर हैं कि हम कहते तो हैं कि हम मोहब्ब अहले बैत हैं, लेकिन मोहब्बत अहले बैत जब भी अमल की मंजिल आती है, मोहब्बत अहले बैत पीछे चली जाती है, हमारी अनामियत आगे आ जाती है, हमारी अनामियत आगे आ जाती है। हम चूंकि ऐसे होने चाहिए, ऐसे अफराद हमारे साथ होने चाहिए और ऐसे लोग हमारे साथ होने चाहिए जो हमारी फिक्र से वाबस्ता हो, जो हमारे ख्याल से वाबस्ता हो, जो हमारे महज से वाबस्ता हो, जो हमारे प्रोग्राम से वाबस्ता हो, जो हमारे तरीके से वाबस्ता हो। ये क्या मतलब? मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि अली के रास्ते पर ले जाए या अपने रास्ते पर ले जाए। तवज्जो की आप अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं या अली के रास्ते पर लाना चाहते हैं, आप अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं या मोहब्बत अहले बैत के रास्ते पर लाना चाहते हैं। मोहब्बत अहले बैत के रास्ते के ऊपर अगर लाना हो तो अपने नफ्स की कुर्बानी पहले देना होगी ताकि मोहब्बत अहले बैत कल्ब में बैठ सके। अपने नफ्स की कुर्बानी पहले देना होगी, जब तक अपने नफ्स की कुर्बानी न दोगे उस वक्त तक मोहब्बत अहले बैत तुम्हारे दिल में ना आएगी, और जब मोहब्बत अहले बैत तुम्हारे दिल में आ जाएगी तो हर किस्म के मोहब्बाने अहले बैत से तुम्हारा गहरा राबिता होगा, इसलिए कि उसके दिल में भी हुसैन की मोहब्बत है, हमारे दिल में भी हुसैन। अब ये बात अलग है कि हम जब पांच उंगलियां बराबर नहीं है तो हम कैसे पांच अफराद को यकसां और बराबर कर सकते हैं। किसी का अंदाज कैसा है, किसी का अंदाज कैसा है, किसी का तरीका कैसा है, किसी का तरीका कैसा है अपनी जगह के ऊपर। पैगंबर एक मुअल्लिम है, कोई ईमान के पहले दर्जे पर है, कोई ईमान के दूसरे दर्जे पर है, कोई तीसरे दर्जे पर, कोई आठवें दर्जे पर, कोई नए दर्जे पर, कोई दसवें दर्जे पर। या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कौन सा अंदाज है तालीम देने का? अजब नहीं कि पैगंबर ये फरमाएंगे कि तालीम देने का अंदाज मेरा दुरुस्त है, तालीम हासिल करने वाले की सलाहियत ही इतनी है, तालीम करने हासिल करने वाले की सलाहियत ही इतनी है कि उसने इतना हासिल किया कि ईमान के पहले दर्जे पर है, उसने इतना हासिल किया कि ईमान के दूसरे दर्जे पर है, उसने इतना हासिल किया कि ईमान के आठवें दर्जे पर है, कोई ईमान के नवे दर्जे पर है, कोई ईमान के दसवें दर्जे पर है। ये उसके हासिल करने की बात है और उसके जब का कमाल है कि वो ईमान के दर्जात को तय कर रहा है। तो आप जितने भी मोहब्बाने अहले बैत है, वो है मोहब्बाने अहले बैत, दायरा खींचोगे तो सब आ जाएंगे उसमें, लेकिन किसी के यहाँ ईमान की किसी कोई और मंजिल है, हमारे यहाँ ईमान की कोई और मंजिल है। तो आप अगर दायरा खींचोगे तो सब नजर आएंगे, फिर तुम्हें छांटना शुरू करते हो, भाई तो अगर आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा या आपका भाई जो आपके घर ही में है गुजरा कर बह गया है, तो उससे कह दीजिए कि तुम भाई नहीं हो, उससे कह दीजिए कि तुम बेटे नहीं हो, बस खत्म होगी बात। ईमान अकुबत देता है कि नहीं, भाई हो गए कि नहीं? अल इन्नमल मुमिनूना इख्वा,
मोमिन सबके सब भाई। तब अगर भाई की बहन जाए तो भाई का परिजन क्या होता है? उसे और अपने से करीब करे, उसकी इस्लाह की कोशिश करे। याद रखिए हमारे मुआशरे में, शिया मुआशरे में इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हमारा तरीका और हमारी फिक्र ये रहेगी कि हम चूंकि इस महज के ऊपर हैं, वो इस महज के ऊपर नहीं रहता, हमको दूर रखे और वो हमारे दायरे में ना आने पाए, पर हम उनके दायरे में ना जाने पाए। जब सब के सब भाई हैं, इस्लाह की उम्मीद वहां हो सकती है जब सबको इकट्ठा किया जाए एक जगह के ऊपर। अब अगर किसी में कोई कमी बातें हो गई है और रह गई है तो उस वक्त उसकी इस्लाह के मौके फराहम हो सकते हैं, वगरना अगर जुदा कर दिया तो जो जा रहा था उस रास्ते के ऊपर उसी रास्ते में चलता चला जाएगा, आपसे कोसों दूर हो जाए। अमीर मोहम्मद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अगर इंसान और जिन्नात मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं, हो जाते तो खुदावंद आलम आदर्श जहन्नम को खल्क ही न अगर हो जाते तमाम के तमाम इस मुज्तमा हो जाते, इकट्ठा हो जाते किस बात के ऊपर? अला हुब अली इब्न अबी तालिब। करके ये बात भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि क्या है जो दिया है पैगंबर ने आप, और क्या है जिसकी कद हम और आप नहीं जानते, जिसकी कद हम और आप नहीं जानते। हम वो है कि जो अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले हैं, तो हमें सुपीरियर होना चाहिए इस कायनात में, सुप्रीम क्वालिटी जिसने अली के चाहने वाले हैं दुनिया में भी उनकी क्वालिटी सुप्रीम होनी चाहिए। तो हम आम इंसानों की तरह जिंदगी क्यों बसर करते हैं, बल्कि उनसे पस जिंदगी क्यों बसर करते हैं? हमारा माहौल गंदा रहता, हमारे घर के अतराफ में कुछ कूड़े और कचरे नजर आते हैं, और हम इतराज करते हैं मौला अली के चाहने वाले ये तौहीन है या इज्जत अफजाई है मौला, ये तौहीन है या इज्जत अफजाई मौला अली। जो मौला अली का चाहने वाला हो उसके अंदर सफाई का भी जज्बा इतना होना चाहिए कि वो याद रखे कि ईमान का एक जुज है जिसमें सफाई कहते हैं, तहारत कहते हैं, पाकीज़गी कहते हैं, ईसार उसमें होना चाहिए, फिदाकारी उसमें होना चाहिए, कुर्बानी उसमें होना चाहिए, भाईचारगी उसमें होना चाहिए, मोहब्बत उसमें होना चाहिए, अदावत उसमें नहीं होना चाहिए, दगल उसमें नहीं होना चाहिए, धोखा उसमें नहीं होना चाहिए, फरेबकारी उसमें नहीं होनी चाहिए। हम कहां पर हैं? कभी हमने सोचा हम किस जगह पे? उस पर ये इकरार करते हैं कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चाहने वाले। कैसे चाहने वाले? अपने अमल से जाहिर करो कि मोहब्बत अहले बैत दिल के अंदर है या मोहब्बत अली दिल के अंदर है, इसलिए कि मोहब्बत अली नूर है, और जब नूर है तो जो नूर कल के अंदर उतरेगा तो आगा और जवारे में साते होगा। कल का काम क्या है? वो ब्लड जो परवरदिगार आलम ने जिस्म के अंदर वदियत किया है वो पंपिंग करता है और सारे आगा और जवारे तक इंसान के जिस्म के छोटे छोटे हिस्से तक वो पंपिंग के जरिए ब्लड पहुंचाता है ताकि उसे जिंदगी मिलती रहे, ताकि उसे जिंदगी मिलती रहे। तो ये दिल जो है ब्लड को पंप कर रहा है हर आन और हर लम्हा ताकि दूसरे आदाय बदन को जिंदगी मिलती रहे। कल वो नाम है उस जगह का जिसमें मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब जगह पाती रहे। अगर है तो सारे आजा और जवारे पाकीज़ा होंगे, होंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि अली के मोहब्बत दिल में हो और इंसान का वजूद पाकीज़गी की तरफ न जाए। इंसान का वजूद पाकीजगी की तरफ ले जाए। तो इन दो बातों में से कोई एक ही बात हो सकती है, या हमने मोहब्बत अली को पहचाना नहीं, या मोहब्बत अली हमारे दिल में नहीं है, जबानों तक भी है, और हमारे दरमियान पाया जाने वाला इख्तिलाफ यही बताता है कि हमारे दिलों में मोहब्बत अली अभी घर कर नहीं पाई है, अभी घर नहीं कर पाई, वरना इख्तिलाफ आता हमारे। दुआ है कि हम सब इस रूट के ऊपर सोचने की कोशिश करें और परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता करे कि अली की मोहब्बत हमारे दिल में नूर बन जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसके लिए बुनियादी तौर से क्या करना चाहिए? बुनियादी तौर से मुआशरा जो होता है वो इकाइयों से मिल करके बनता है। ये सारी इकाइयां जब जुड़ती चली जाती है तो एक मुआशरा बन जाता है। तो अब अगर इकाइयां गंदी हो, इकाई सही ना हो, किसान के तौर पर बहुत सारे आप दायरे देखें किसी कंप्यूटर में, किसी टेलीविजन के ऊपर, उसमें एक दायरा आ जाए और ये दायरे मल्टीपल हो रहे हैं, एक दायरा काला भी जाता है, इस काले दायरे में मल्टीपल होते होते सफेद दायरों को भी अपने असर में उतासिर करना शुरू किया, उतासिर करना शुरू किया। नतीजा क्या होगा? कुछ अरसे के बाद ये जितने भी सफेद थे इसमें धब्बे नजर आने लगे। जरूरत इस बात की है कि अपने आप को पहले इतना क्लीन कर लिया जाए ताकि मोहब्बत अली हमारे वजूद में आ सके, उतर सके। सबसे पहले अपनी जात को पाकीजा बनाने की कोशिश, अपने आप को पाकीजा बनाने की कोशिश। जिस कदर अपने आप को पाकीजा बनाओगे, जितना अपनी जात को पाकीजा बनाओगे उतना ही मुआशरा पाकीजा होता जाएगा। इसलिए जितनी इकाइयां पाक होती जाएंगी, पाकीजा बनती जाएंगी, उतना ही मुआशरा पाक और पाकीजा होता जाएगा। और जितना मुआशरा पाक और पाकीजा होता जाएगा तो किस लिए कहा जा रहा है कि मुआशरे को पाक और पाकीजा बनाओ? इसलिए कि साहिबाने तकहीर की मोहब्बत की जगह पाकीजा होती जाए। साहिबाने तकहीर की मोहब्बत की जगह कैसी होनी चाहिए? पाक और पाकीजा होनी चाहिए। तो दिल में अगर फासिक ख्याल है तो वो अली का घर कैसे बनेगा? नहीं हो सकता। इसके लिए परवरदिगार आलम ने जो बेहतरीन इबादत हमें अता फरमाई है, हुनर इबादत जो हमें अता फरमाया है उसे कहते हैं रोजा। पाकीजा करने के लिए, जाहिर को पाकीजा करने के लिए और बातिन को पाकीजा। अगर हमने रोजे से भरपूर इस्तेफादा कर लिया तो ये याद रखिए कि रोजे के तमाम होते होते हमारी ईद ईद होगी। लेकिन अगर हमने भरपूर फायदा नहीं उठाया रोजे से तो हमारी ईद सिर्फ सेवई बन जाएगी। तो ईद को सेवई न बनने दीजिए, ईद को ईद बनाइए। इसके लिए रोजे से भरपूर इस्तेफादा करो। ये वो इबादत है कि जिस इबादत के लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक-ए-करीमा-ए-अहले-बैत। انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت. اے لوگو, اللہ کا مہینہ اپنی برکتوں, اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرتوں کے ساتھ تمہارے استقبال ہوا. تمہارے تم نہیں جا رہے ہو, تم نہیں جا رہے ہو اس کے استقبال, وہ آ رہا ہے تمہارے استقبال. وہ آ رہا ہے تمہارے استقبال. ماہ مبارک کہاں رہا ہے؟ آپ کے استقبال کو آ رہا ہے. تو جو چیز مبارک ہو اور آپ کے استقبال کو آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک آپ کی ذات کتنی قیمتی ہے. ہے نا جی؟ اگر قیمتی نہ ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ تم جاؤ اس طرف. پروردگار عالم کا رسول کہہ رہا ہے کہ وہ مبارک مہینہ تم تک آ رہا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم ایک زمانے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور زمانہ گردش میں ہے, اور وہ گردش سال کی گردش جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے استقبال کو آتا ہے, یہ ایک چیز ہے. لیکن خدا کی کسی مبارک عبادت اور بندگی کی شان یہ ہے کہ وہ مومنین کے استقبال کے لیے آئے, کس اعتبار سے؟ خالی نہ آئے, برکتوں کے ساتھ آئے, رحمتوں کے ساتھ آئے, مغفرتوں کے ساتھ آئے. مہمان جب بھی آتا ہے تو کچھ چیزیں لے کر بھی آتا ہے نا. تو پروردگار عالم نے یہ جو ہمارے لیے ماہ مبارک کو بھیجا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا, بلکہ ماہ مبارک کو رحمتوں کا مہینہ بنا کے بھیجا, برکتوں کا مہینہ بنا کے بھیجا, مغفرتوں کا مہینہ بنا کے بھیجا. وَتُعِيتُمْ فِيهَ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ, اور تمہیں دعوت دی گئی ہے اس مہینے میں اللہ کی مہمانی. وَتُعِيتُمْ فِيهَ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ, اور تمہیں دعوت دی گئی ہے اس مہینے میں کس چیز کی؟ اللہ کی مہمانی کی. یعنی تم اس مہینے میں خدا کے مہمان. پالنے والے تم نے خلق کیا تو ہم خلق ہوئے, تو نے وجود دیا تو ہم موجود ہوئے, تو نے رزق دیا تو ہم نے کھایا, تو نے لباس دیا تو ہم نے اپنا بدن ڈھکا, تو نے نعمتیں ہمیں فراہم عطا کی کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود تو ایک خاص موقع کے اوپر ایک خاص زمانے میں ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے. ہمیں ہم کچھ بھی نہیں ہے, لیکن تو ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے. وَتُعِيتُمْ, اور دعوت دی گئی ہے تمہیں فیہ, اس مہینے میں, إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ, اللہ کی مہمانی کی دعوت. تو اللہ کی مہمانی کی دعوت کس شان سے کی گئی ہے؟ ارشاد فرماتا ہے نفثتم فیہ التسبیح, اس میں تم سانس بھی لوگے تو یہ تمہاری سانسیں بھی تسبیح بنتی جائیں. ونومکم فیہ عبادت, اور تمہارا سو جانا اس مہینے میں عبادت, سو جانا اس مہینے میں عبادت. یہ بات غلط ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو بہت سے گناہوں سے یوں ہی محفوظ ہوتا ہے, لیکن ماہ مبارک کا سونا واقعی سونا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ اس کے غیبت کا اندازہ جو ہے سوائے خدا کے کوئی نہیں لگا سکتا. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب یہ ہے پروردگار عالم کا مہینہ. خود سازی کہاں کرنی ہے؟ خود سازی یہیں کرنی ہے. اس ایک مہینے میں بھوکے رہو, کھانا سامنے رہے جب بھی نہ پڑاؤ ہاتھ. آنے والی یہ کون سی بات ہے؟ تو نے کھانا تو نے دیا ہے, کھانا پانی تو نے دیا दिया है, भूख भी तूने दी है, प्यास भी तूने दी है नहीं, खाना भी उसी का, पानी भी उसी का, भूख जो पैदा की है उसी की पैदा की है, प्यास भी पैदा की है, हमारे वजूद में उसी की है। अब ये कह रहा है कुछ अच्छे के लिए ना खाओ ना पियो, पाने वाले क्या चाहता है, तूने खाना बनाया है खाने के लिए, तूने पानी बनाया है पीने के लिए, और तू कह रहा है ना खाओ ना पियो। आवाज भी उसने कि हर चीज इस्तेमाल की जाती है, मैंने तुमको खल्क किया है, तुम्हारे बदन की हकीकत को, जिस्म की हकीकत को, रूह की हकीकत को मैं जानता हूं। जब खाओगे तो कैफियत एक होगी, जब हाथ रोक लोगे तो कैफियत अलग होगी। कैसी कैफियत हो? जब खाते रहोगे तो मादी ख्वाहिशात का सिलसिला बाकी रहेगा, और जब हाथ रोक लोगे तो मादी ख्वाहिशात खत्म होती जाएंगी, रूहानी ख्वाहिशात पड़ती जाएंगी। सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी जिस्मानी ख्वाहिशात को कुचलना और रूहानी तवानाइयों को बढ़ाना, जिस महीने में परवरदिगार आलम ने हमसे तलब किया है, उस महीने का नाम है माह मुबारक रमजान। उस महीने का नाम मानवी ताकत और कुव्वत और तवानाई को जितना बढ़ाना चाहते हो, यानी रूहानी तवानाई को जितना तुम बढ़ाना चाहते हो, इसलिए कि तुम बगैर जिस्म और रूह के खल्क ही नहीं हुए हो। जिस्म के लिए हमने साल भर तुम्हें खिलाया और पिलाया, लेकिन रूह की गजा के लिए एक महीना हमने मुअय्यन कर दिया। अब इतनी देर तक न खाओ ताकि तुम्हारी रूह से राह होती रहे, तुम्हारी रूह कभी होती रहे, तुम्हारी रूह तवाना होती रहे, तुम्हारी रूह बाकी रहे, तुम्हारी रूह कुव्वत हासिल करे। जितना तुम्हारी रूह कुव्वत हासिल करती रहेगी, उतना ही तुम्हारी कुव्वतें परवाज़ पड़ती जाएगी। जिस्म हल्का होता जाएगा, रूह कभी बनती जाएगी, और एक मंजिल को आएगी कि जब जिस्म इतना हल्का हो जाए, एक लम्हे में ताबत और सैन और अदना की मंजिलें तय। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी ये जिस्म जो बताया गया है 60 किलो का है, 70 किलो का है, 100 किलो का है, इस जिस्म को रूह की तवानाई इसके वजन को कम करती जाती है। कौन सी चीज है जो इसके वजन को ज्यादा करती जाती है? गोश्त? गोश्त नहीं, मानवीय एतबार से, रूहानी एतबार से वो शय इसकी बोझ को ज्यादा करती जाती है, जिसे कहते हैं गुनाह। इंसान जितना ये तबीयत तो बोझलपन आ जाता है, ये बोझलपन जो है वो यूं ही नहीं होता, तबीयत के ऊपर जो एक बोझ महसूस होने लगता है, ये बोझ यूं ही महसूस नहीं होता, बल्कि अगर इसकी तह में जाइएगा तो आपसे जो कोताहियां हुई होती है, जो गलतियां हुई होती है, जो गुनाह हुए होते हैं, उसने दिल के ऊपर एक ऐसा बोझ डाला हुआ होता है कि जिससे आप अपनी तबीयत में बोझ महसूस करते हैं। दुनिया की कोई मशीन ऐसी खल्क नहीं हुई है जो गुनाह के वजन को महसूस कर सके, सिवाय ईमान, सिवाय ईमान के। राह ईमान में गुनाह का बोझ महसूस किया जाता है, लेकिन जितना गुनाह का बोझ आप हल्का करते चले जाएंगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका वजन हल्का होता है। जिसको आपका वैसे ही 60-70 किलो का रहेगा, लेकिन आप में जो कुव्वतें परवाज आएगी वो अर्श की मंजिलों से हम करेंगे, वो कुव्वतें परवाज आपको अता होगी। अस्सलात मेराज मुमिन, नमाज मुमिन की मेराज है। मेराज किसे कहते हैं? खुदा से करीब हो जाना, खुदा से करीब हो जाना। आप इधर मुसल्ले पर आए और इधर पर परवरदिगार आलम ने अपने से इतना करीब कर लिया कि आप उससे गुफ्तगू करने लगे, वो आपसे बातें करने लगे। ये क्या है? ये अपने आप को सबक करके बलदान सल्लाए के बाद गुनाह बोझ है वो। हम आए मुबारक में दुआ पढ़ते हैं, गुनाह बहुत ही सख्त है, बहुत ही सख्त है। जहां गुनाह होते हैं वही इख्तलाफा, जहां गुनाह होते हैं वही कुदूरते होती, जहां गुनाह होते हैं वही नफरतें होती। हम माहे मुबारक में दुआ पढ़ते हैं, या अली हो या अजीम हो या रसूल हो या रहीम, ऐ अली ऐ बुलंद बुलंद करीम, ऐ अजीम ऐ रहमत वाले, ऐ मगफिरत करने वाले, ऐ रहम करने वाले, अंतर रब्बुल अजीम तो रब अजीम है, अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शय या जिसके मिस्ल कोई शय नहीं है, वहुव समीउल बसीर है वो माबूद जो सुनने वाला भी है जो गहराई से देखने वाला भी है। वहाद शहरुन अज़्ज़मतहु वकर्रमतहु वशर्रफ़तहु वफ़ज़्ज़लतहु अल शुहूर, और ये महीना जो है इसे तुमने अज़्ज़मतहु मुअज़्ज़म बना दिया, बुजुर्ग बना दिया, कर्रमतहु करामत बख्शी है, शर्रफ़तहु बाफ़ज़ीलत बनाया है, शुहूर तमाम महीनों के ऊपर। वह शहर लदी फरज का सियाम अलैया, और यह वो महीना है कि जिसमें तूने हम पर रोजे वाजिब किए। वह शहर रमजान, और यह वो महीना है कि जिसे तूने रमजान का नाम दिया। अल्लदी अनजलत फीहिल कुरान, यह वो महीना है जिसमें तूने कुरान को नाजिल किया। अब यह फजीलतें बयान की जा रही है, पहले खिताब था महबूब की तरफ, दूसरा तारीफ थी माह मुबारक की, और तारीफ के बाद उसकी अजमतों की तारीफ, और उसके बाद उसकी अहमियत का इजहार इस एतबार से कि इसमें तूने कुरान को नाजिल किया। अल्लज़ी अंज़लता फीहिल कुरान, फी है लैलतुल क़द्र है ना, वजाल कहा खैरम मिन अल्फ शहर, और इसी में तूने लैलतुल कद्र को भी नाजिल किया। अंदर तफी है लैलतुल कद्र, वजाल कहा खैरम मिन अल्फ शहर, और उसे हजार रातों से ज्यादा बेहतरीन बनाया, एक शब कद्र एक रात। फया बल मन ने वला युमन वाले, और ऐ एहसान करने वाले, बस ऐ एहसान करने वाले कि जिसके ऊपर कोई एहसान करने वाला नहीं है, तू एहसान करता है तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करता। मुन्ना अलैया, मेरे ऊपर ये एहसान कर दे क्या, ते फकाते रकावती मिनन्नार, कि मेरी गर्दन आतशे जहन्नम से छुड़ा। ये क्या हुआ कि हम आदर्श जहन्नम में गिरफ्तार हुए, हमारा अपना गुनाह था जो इस मंजिल के ऊपर हमें ले आया कि हमारी गर्दन में जहन्नम की आग की रस्सी पड़ गई। ये दुआ इतनी तारीफों के बाद अब ये एक गुजारिश है, तो क्या है कि पालने वाले आतशे जहन्नम से हमें निजात दे। आतशे जहन्नम के मुस्ताद क्यों बन गए, गुनाह करने में। तो अगर गुनाह से हमको आजाद होना है तो ये बेहतरीन महीना है कि इसमें तलब मगफिरत की जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, ताकि इस दुआ के सदके में परवरदिगार आलम हमें जहन्नम से निजात दे दे और जन्नत का परवाना हमें अता फरमाए। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कुछ और बात आपकी खिदमत में जिक्र करने के लिए आया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। क्या हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम जो मुआशरे की एक एक इकाई है, हमें खुद पहले अपने आप को पाकीज़ा बनाना चाहिए, और हमें अपने जहन को जो कंजर्वेटिव हो गया है, जो महदूद हो गया है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो वजूद जो सिर्फ अपने लिए सोचता है उसे क्या कहते हैं, जो सांस भी ले रहा है, जो खा भी रहा है, वो जो पी भी रहा है, और जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, उसे क्या कहते हैं? है ना? जवाब दे दिया। जानवर, जानवर सिर्फ अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचता है। इंसान इस मंजिल से कहीं आला और अरफा है, इसे होना चाहिए। और उसके वजूद में परवरदिगार आलम ने यह कुव्वत और तवानाई अता की है कि वो जानवर न बना रहे बल्कि इंसान बने। पैकरे इंसान का में पैदा होना एक बात है और अपने आप को इंसान बना के रखना दूसरी बात। तो अब तक हम पैकरे इंसान में पैदा हुए, खाते रहे, पीते रहे, बच्चे रहे, जवान रहे, तवाना हो गए, लेकिन इंसान बने या नहीं बने ये एक लंबे फिक्रिया। इंसान किस हद तक बने? जब तक इंसान अपने बारे में सोचेगा जानवर रहेगा, जब इंसान गैर के बारे में सोचना शुरू करेगा इंसानियत उसके अंदर आती है। नहीं तो आपने जब तक इंसान अपने बारे में फिक्र करेगा जानवर रहेगा, जब अपने अलावा दूसरों के बारे में बल्कि अपने से बेहतर दूसरों के लिए सोचेगा और फिक्र करेगा इंसानियत उसके अंदर पैदा होती जाएगी। और जितना ये दायरा वसी होता जाएगा उतना ही ये इंसानियत उसकी रफी होती जाएगी, बुलंद होती जाएगी, इंसानियत उसमें ज्यादा होती जाएगी। है कि नहीं? तो अगर हम सिर्फ ये तसव्वुर रखेंगे हमें सिर्फ खाना है तो हम जानवर ही जानवर रहेंगे, लेकिन अगर हम ये तसव्वुर रखें कि तनहा हमें खाना नहीं है बल्कि खिलाना भी है तो हम जानवर की हद से ऊपर इंसानियत की उस सरहद पे चले जाएंगे कि जहां तक खुदा हमें पहुंचाना चाहता है। खुदा की शान यह है कि वो खिलाता है, खाता नहीं है, है ना? वो खिलाता है, खाता नहीं है। तो जब खिलाता है वो खाता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस इंसान में कि जिसमें ये कैफियत पैदा हो जाए इलाही सिफत आ जाती है, जिसमें इलाही सिफत आ जाए वो इंसान बनता चला जाता है। और जब ये इंसान अपने इस कमाल को पहुंच जाता है कि जब किसी फिक्र में रहता है खाऊं या ना खाऊं लेकिन दूसरों को खिलाने की फिक्र में रहूं तो ये इंसान को इलाही इंसान हो जाता है कि जिसकी शान ये होती है कि सूरह तहर में ऐलान होता है वही कहूं न तुम तो वो हो जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और असीर को खिलाया करते हैं। सलात करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम जब बढ़ते हैं पूरे तौर से बढ़ते हैं ये रोजा हमें कहां तक ले जाए? वहां तक ले जाएगा जहां हमारे वजूद के अंदर इलाही सिफात जलबगर हो, इलाही खुसूसियतें जलबगर हो, जहां हम भूख को महसूस करें, जहां प्यास को महसूस करें, जहां ख्वाहिशात को महसूस करें, दूसरों की जरूरतों को महसूस करें, और जहां महसूस करने लगेंगे तो लोगों का दर्द भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में अल्लाह ने सिर्फ फकीरों के ऊपर रोजे नहीं रखे बल्कि अमीरों के ऊपर भी रोजे रखे ताकि अमीर जब भूखे और प्यासे रहें तो उन्हें गरीबों की गुर्बत का फक्र फाके का एहसास हो सके। परवरदिगार आलम ने सबको इस इबादत में रखा, सबको इस इबादत। तो ये इबादत हमें कहां तक पहुंचाती है? ये इबादत हमें वहां तक पहुंचाती है कि जहां हमसे ये हुक्म दिया जाता है कि जब रोजा रखो तो रोजे के दौरान जब नमाज पढ़ लो तो ताकि बाद में एक दुआ जरूर पढ़ा करो। और वो कौन सी दुआ है? اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير. پہلا جملہ ابھی چھوڑتا ہوں، بعد میں آپ کو ذکر کروں. اللهم اغن كل فقير، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ روزہ دار پڑھ رہا ہے. اس نے کتنی قوت اور توانائی پیدا کر لی، کتنی وسعت اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لی ہے کہ یہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں دعا نہیں کرتا. توجہ ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کرتا. پھر کس کے لیے دعا کرتا؟ اپنے خاندان والوں کے لیے. نہیں، خاندان والوں کے لیے بھی دعا نہیں کرتا. کس کے لیے دعا کرتا؟ اللہم اغن کل فقیر. شیعوں کے لیے، شیعوں کے لیے دعا نہیں کرتا. مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پہلے امت مسلمہ کے لیے دعا نہیں کرتا. پھر کس کے لیے دعا کرتا؟ اللہم اغن کل فقیر. امریکہ میں بھی جو فقیر ہے، آسٹریلیا میں بھی جو فقیر ہے، فیجی میں بھی جو فقیر ہے، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، ایشیا میں ہو، کہیں بھی فقیر ہو، اس کی پیشانی کے اوپر یہ مہر نہیں لگی ہوئی ہے یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی. روزے نے انسان کی روحانی قوت اور توانائی کو اتنا بڑھایا کہ جب اس نے بھوک اور پیاس کو محسوس کر لیا تو اس نے آواز دی، اس فقر و فاقے کو اور اس تنگرسی کو محسوس کیا تو آواز دی، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع. پالنے والے کوئی بھی بھوکا رہے، کوئی بھی بھوکا رہے، انسان ہی نہیں، جتنے میدان آنکھ رکھنے والے جو بھی کھاتے ہیں، حتی جانور بھی. اللہم اشبع کل جائع، پالنے والے سب کا پیٹ بھر دے، سب کا پیٹ بھر. اللہم اصف کل اولیان، یعنی یہ حج کی، یہ روزے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان کو آفاقی زندگی عطا کرنے کی ایک تمرین ہے جو اس دعا کی روشنی میں ہمیں بتائی جا رہی ہے. آفاقی زندگی کا تصور. اللہم اصف کل جائے، اللہم اصف کل اولیان، پالنے والے تمام برہنہ لوگوں کو لباس عطا کرتے ہیں. جب انسان اس منزل کے اوپر پہنچے اور اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ بھی رہے، تب اہل بیت کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. کیونکہ ہاں، آنے والے، آنے والے یہ کہہ کے نہیں آتے تھے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اس لیے آیا ہوں، میں آپ کا دوستدار ہوں اس لیے آپ کے در پہ آیا ہوں. نہیں، جو بھی رہے اہل بیت پر آئے، اہل بیت اس کی حاجتیں پوری کرتے. یہ دعا کیا کہہ رہی؟ یہ دعا کہہ رہی ہے کہ روزہ دارو، روزہ رکھو تو اپنے دل و دماغ کو اتنا وسیع بنا لو کہ دنیا میں کسی اور مہر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. سامنے اگر انسان آ رہا ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، بے لباس ہے تو لباس عطا کر دو، فقر و فاقے سے ہے تو اس کی تندرستی کو دور کر دو. اللہم اغذینا کل مدین، پالنے والے ہر قرضدار سے، اس کے قرض سے اسے نجات عطا کر دے، ہر قرضدار کو قرض سے نجات عطا کر دے. اللہم فرج عن کل مکروہ، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے. اللہم رد کل غریب، بھائی وہ ہمارے بھی دوست رہبان گئے ہیں حج کے اوپر، اور وہ کچھ لوگ وہ جو ہیں جن سے ہمارا مسلک نہیں ملتا، ان کے بھی گئے ہیں مسافرت کے اوپر، ان کے لیے دعا ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں گے. رمضان مبارک کی یہ دعا کہہ رہی ہے، اگر روزہ دار ہو اور اپنا دل وسیع کیا ہے تو ہر مسافر کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، پالنے والے ہر اسیر کو نجات عطا کر، رہائی. جس طرح آپ کے اسیر اسیر ہیں، اسی طرح دوسروں کے اسیر اسیر ہیں، ہر اسیر کو رہائی عطا کر. یہ نقطہ نظر کہاں سے ملے گا؟ یہ نقطہ نظر اسی روزے کی عبادت سے. تنہا بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے چند گھنٹے، ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم صرف بھوکے اور پیاسے رہو، نہیں، خدا بند عالم نے اسی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے وہ روحانیت اور معنویت ہمارے دل کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محدود رکھ کے نہ سوچیں بلکہ یونیورسل پوائنٹ آف ویو سے کائنات کائناتی سطح کے اوپر سوچے, جب یہ قوم کائناتی سطح کے اوپر سوچے گی تو یہ قوم کائناتی سطح کے اوپر ترقی بھی کرے. جب قوم کائناتی سطح کے اوپر سوچتی ہے تو قوم کائناتی سطح کے اوپر ترقی بھی کرتی ہے. تو یہ دعا بتا رہی, اللہم ارد کل علی, اللہم افق کل عزیز, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے تمام فسادات میں اصلاح کر, تمام فساد, تمام برائیوں میں اصلاح کر, تمام خرابیوں میں اصلاح کر. شافعی کا ذکر ہے, مالکی کا ذکر ہے, حنبلی کا ذکر ہے, جعفری کا ذکر ہے, کہیں ہے مسلمین. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اس لیے کہ امت مسلمہ میں کہیں بھی اصلاح ہوگی اس کا اثر دوسرے فرقوں کے اوپر بھی پڑے گا. لیکن ایک فرقہ اگر اصلاح پسند ہو گیا اور اس نے اصلاح کی راہ کے اوپر قدم بڑھایا تو دوسرے فرقے بھی اس سے متاثر ہو کر کے اصلاح کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. اب ہمیں کہنے دیجیے کہ ہم خود بھی اپنی جگہ کے اوپر جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اصلاح کی راہ پر قدم آگے نہیں بڑھا رہے ہیں, وگرنہ اگر ہم بھی اپنے آپ میں اصلاح کی راہ پہ قدم بڑھاتے تو دوسرے بھی اس سے متاثر. ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملک میں اصلاح پسند مسلمان امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, تو جب امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے امت مسلمہ کی عزت و سربلندی کے لیے جو کارنامے انجام کیے, آج دنیا کے جس کونے میں چلے جائیے اسلام کی عزت و عظمت و سربلندی ایران کی حکومت کے ذریعے نظر ہوا. انہوں نے اسلام کی, مسلمان دوسرے ممالک میں سربلندی سے چلنے لگے, اسلام کسی اور ملک میں ہو رہی ہے, ہم اپنے ملک میں شان سے چل رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام ہے کہ جس نے اتنی ترقی کی ہے, اتنی پیش رفت کی ہے, اتنی عظمت کے اوپر فائز ہے. دشمنان اسلام سے دو بدو اکڑ کر کے ملتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہماری عزت اور ہماری عظمت اور سربلندی. اللہ مشکل بھائی بیمار پڑ گیا اسی کے لیے دعا کرو, ابا بیمار پڑ گئے انہیں کے لیے دعا کرو. روزے والی یہ دعا کہتی ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے مریض کے ساتھ کائنات کے تمام مریضوں کے لیے دعا, کائنات کے تمام مریضوں کے لیے. اللہم اشف اللہم سد فقرنا بغنا, آنے والے روک دے ہمارے فقر کو اپنے غنا, ہمارے فقر کو روک اپنی غنا اور بے نیازی کے لیے. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالنا, آج پوری امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے, سوء حال بدحالی کا شکار ہے پوری امت دعا کر رہے ہیں, اللہم غیر سوء حالنا کا حسن حال, پانے والے ہماری بدحالیوں کو اچھے حالات میں تبدیل کر. اللہم اجعلنا دائما باقين من الفقر انك على كل شيء قدير. صلوات من محمد وعلى یہ عبادت ہے. دوسری قوموں میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ ذرا روحانی سکون حاصل ہو, ذرا روحانی اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے ذرا سا سکون حاصل ہو جائے عبادت. ہمارے یہاں عبادت کا تصور اس کے علاوہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عبادت خدا کی جا رہی ہے, خدمت بندگان خدا. صلوات علی محمد وعلی محمد. خداوند عالم اسے اپنی عبادت شمار کر, ये कहीं और नहीं, मकतब अहले बैत के अलावा कहीं और ये बात नजर नहीं आती। बंदगान खुदा की खिदमत करते चले जाओ यही ये बात, सवाई अहले बैत के मकतब के कहीं और ये बात नहीं। यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं, इसलिए इकराम अल वक्त की गुंजाइश नहीं है। हमारे अपने किरदार, हमारे अपने हालात, हमारी अपनी कोताहियां, हमारी अपनी खराबियां, हमारी अपनी बदजबानियां, हमारे अपनी लड़ाई और झगड़े, हमारे और अपने अपने इख्तलाफात, इन्होंने मौके फराहम किए हैं कि दुश्मन हमारे सरों के ऊपर चढ़ा, दुश्मन हमारे सरों के ऊपर चढ़ा। कल आपने मजलिस सुनी और शहजादी कौने सानिया जहरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब ज़ैनब कुबरा के हराम मुतहर की जो बेहरमती की गई है, सैन में मार्टर गन का एक तो ये गोला गिरा, ये बात यह गुना लाइन का तस्कीन है कि जरी है मुतहर महफूज है, और ये बात हमारे और आपके इमाम ज़माना के लिए वाकई शदीद और तकलीफ दे, उनके बुकी सामी जहरा के हाल में मुतहर की बेहतरमती है, लेकिन यह हमारे ही हालात का नतीजा है कि चंद बरस पहले हजरत बकीयतुल्लाह अल आज़म के पितर बुजुर्गवार और मादरे गिरामी के हरम को इस्तेमाल किया, सामग्रा को किस तरह से तबाह किया गया, ये कैफियत हमारे सानिय जहरा के हरम में नहीं हुई जो सामग्रा के हरम की मजलूमियत, लेकिन दोनों गम की जगह, दोनों तासुर की जगह, ये हमारे अपने हालात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर दुश्मन इतना चाहिए। हमने कभी अपने अपने मुल्क में भी इन हालात की इस्लाह के लिए नहीं सोचा, ये बहस है मुस्तकिल कि हम मुसाफिरत करते हैं और अपना मुल्क छोड़ करके जाते हैं तो हमारा असली मतमाइन नजर क्या होता, असली मकसद हमारा क्या होता, हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या, तो क्या होना चाहिए क्या। लेकिन यह समझदा करने के लिए काफी है कि शहजादी के हरम में बिजुल सानिया जहरा जनाब ज़ैनब कुबरा के शोक में कल भी हम आप बैठे थे और आज भी बैठे थे, ये कौन सी मुखदरा, ये वो मजलूमा है कि जिसने अपने भाई से दोहरा गम उठाया, भाई से भी दोहरा गम उठाया। हुसैन ने एक जिहाद किया, ज़ैनब ने दो जिहाद, हुसैन ने एक मुसाफिर की, ज़ैनब ने दो मुसाफिर किए। हुसैन ने कर्बला तक अपनी कुर्बानी को महदूद रखा, ज़ैनब ने पर हम कुर्बानियां कर्बला से कुर्बा और कुफे से शाम कर, वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जनाब ज़ैनब जब रुखसत कर रही थी अपने भाई को, ऐसी सख्त मंजिल में सुबह आशूर से कई मरतबा बेहोश हो चुके, सुबह आशूर कई मरतबा बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब से शहदा तशरीफ लाए तो अलग अलग चीजें नजर आती, दो अलग अलग चीजें, सिर्फ शहादत की खबर सुनके जो ज़ैनब बेहोश हो रही थी उसने अपनी निगाहों से हुसैन का ने भाई का गला कटते हुए आपको महसूस किया, कभी महसूस किया इसका? ये वजह है कि जब हुसैन चलने लगे हैं, देखा कि ज़ैनब का ये कल्ब की कैफियत अजीब और गरीब है, तो हुसैन ने अपना दस्त मुबारक कल्ब जनाब ज़ैनब तसर्रुफ विलायत के जरिए सब की तलखीन। वो बहन जो शहादत की खबर सुन के इस तरह मुंतकिल हो रही है, मेरे बाप क्या करेगी, मेरे बाप क्या करेगी? लिहाजा ये दस्त विलायत रखा सीने जनाब ज़ैनब के ऊपर सैयद शहादा ने, पालने वाले थोड़ा सब्र अदा करते थे, थोड़ा और एक मरतबा जब अपने भाई की खबर नहीं सुनी मोहम्मद ने, तो आई लड़खड़ाते के कदमों से खेमे खेमे से कैसे निकली थी ज़ैनब के उसका कि मैं ज़ैनबिया का कैसे पहुंची जहाँ पे ज़ैनब को रखते लेकिन उस बरंदी से जो मंजर देखा ये तरह ज़ैनब भी देख सकती थी। खंजर की रवानी सूखे गले के ऊपर और ज़ैनब देख रही, कह रही हम आपकी कौन मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान मौजूद नहीं, तुम देख रहे हो नवाज़े रसूल दबा किया जा रहा है। और इतने में एक मरतबा जनाब ज़ैनब को अपनी आंखों से इशारा करते हैं सैयद शुहदा, मेरी बहन खैमे की तरफ वापस ले जाओ, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। लड़खड़ाते हुए खैमों से दरे खैम कदमों से दरे खैमा तक पहुंची थी, एक मरतबा जमीन करबला को सलसला आ गया, दौड़ी भी आई सैयद सर जाकर शाना हिलाया, आवाज भी मेरे लाल देखो कैसे कयामत के आसार नमूदार हो गए, कोई कह रहा
دشمنوں کا ظلم انہی کی طرف واپس پلٹا پروردگار آپ عامل علماء اعلام بنا دیے اور رہبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھا جن مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ہوں گے دارثار و شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک محمد و علی محمد